बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज भी हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। या नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। इतवार की रात कराची एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, इसी के साथ तफ्तान में ज़ायरीन के कारवां पर भी हमला हुआ और दोनों हमलों में कुल मिला के 60 से ज़ायद अफराद मारे गए। कराची में दहशतगर्दों ने मंगल को भी एयरपोर्ट पर हमला किया था। अगरचे दोनों हमले बज़ाहिर अलग अलग नज़र आते हैं और मुमकिन है कि इनके असल मुहर्रिकात भी अलग अलग हों, लेकिन इनमें बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। कल के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तजिया निगारों का ख्याल है कि ताफ्तान में ज़ायरीन पर हमला कराने वाले दहशतगर्द ग्रोह जैशुल इस्लाम भी तालिबान से ही वाबस्ता है और मुमकिन है कि दोनों हमले हमाहंगी के साथ किए गए हों। तजिया निगारों का कहना है कि इन हमलों के ज़रिए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को खुला चैलेंज दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस जाविये से गुफ्तगू करेंगे कि इस बात का कितना इम्कान है कि कराची और ताफ्तान दोनों जगह पर अंजाम पाने वाले दहशतगर्दाना हमले पूरी हमाहंगी के साथ किए गए हों। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जड़ें कहाँ हैं और क्या शिया मुसलमानों के खिलाफ जारी बल्कि रोज़ बरोज़ वसत पज़ीर दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर पाकिस्तान के हसास इदारों कराची बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे जैसे अहम मराकज़ और पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दाना हमलों को रोका जा सकता है। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
पाकिस्तान में एक बार फिर तशद्दुद और दहशतगर्दी में उबाल आ गया है और हालिया कुछ दिनों के अंदर दहशतगर्दों के हाथों दसियों बेगुनाह शहरी जां बहक हुए हैं, बल्कि कराची एयरपोर्ट पर हमले जैसे इकदामात से दहशतगर्दों ने हुकूमत को भी चैलेंज किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटने के अज़्म का अदा किया और इसके साथ ही खबरों में आया है कि पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में पाकिस्तान की फजाइया के जेट तैयारों की बमबारी के नतीजे में कई दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम अभी ज़ायरों पर बेरहमाना हमले के सदमे से निकल नहीं पाए थे कि मुल्क के इंतहाई अहम एयरपोर्ट पर भी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हालांकि फौज, रेंजर्स, पुलिस और एएसएफ की जानिब से 5 घंटों की तवील जांफिशानी के बाद कराची एयरपोर्ट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया और 12 घंटों के तातुल के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे में परवाजें बहाल हो गई हैं, लेकिन इस हमले से दहशतगर्दों के मकासद बज़ाहिर पूरे हो गए थे और उन्होंने पूरी दुनिया को पाकिस्तान में हुकूमत के सामने और सिक्योरिटी इदारों के मुकाबले में अपनी ताकत का एहसास करा दिया। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्द एयरपोर्ट पर खड़े तमाम तैयारों और शहरी हवाबाजी के पूरे निज़ाम को तबाह करना चाहते थे और एक मुसाफिर बरदार तैयारे का अगवा भी करना चाहते थे, मगर सिक्योरिटी अहलकारों ने इंतहाई बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए उनके अजायम को नाकाम बना दिया। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बुरी तरह से जहनों में गूंज रहा है कि पाकिस्तान में तालिबान से कौन सा मकाम महफूज है। हालांकि कुछ फरीकों ने इन हमलों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी की और मुबैना तौर पर इसमें हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी टीम का हाथ बताया, लेकिन तालिबान ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियों को कोई ख़ास पजीराई हासिल नहीं हुई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और इस कल अदम तहरीक के तर्जुमान ने इस इंतहाई संगीन हमले को महज इब्तिदा करार दिया है और मुस्तकबिल में ऐसे मजीद हमलों की धमकी दी है, मगर इसके साथ ही ये भी इंदिया दिया है कि हुकूमत की जानिब से संजीदगी और मुकम्मल इख्तियार के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का वो एहतराम करेंगे। ताहम अब ये वाज़े नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे हालात में कि जब मुज़ाकरात पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुए थे, तालिबान की जानिब से इस तरह के हमलों के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात में तालिबान के एलानिया दिलचस्पी का कितना एहतराम कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मामला पहले ही मुतनाज़िया है और इस सिलसिले में फ़ौज और हुकूमत के दरमियान नज़रियाती फासले से सभी वाकिफ़ हैं। इसलिए माहिरीन के मुताबिक तालिबान की हालिया कार्रवाइयों के बाद مذاکرات کے سلسلے میں حکومت کا موقف کمزور اور فوج کا موقف مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے خیالات کی بھی تقویت ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستان میں قیام امن ممکن نہیں ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے شرکت کریں گے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ثاقب اکبر صاحب۔ کراچی سے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین، اور لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار شبیر رضوی صاحب۔ بہرحال، پاکستان میں دہشت گردی ایک گمبھیر مسئلہ بن چکی ہے، اور جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا، وہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے طرفداروں کا اور طالبان کے حامیوں کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امن کے بغیر اور طالبان کے ساتھ معاہدے کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس کو کسی اور سے منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا طالبان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال، طالبان نے تو صاف اور واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ کراچی پر حملہ انہوں نے کیا ہے، اور اس حملے کے ذریعے انہوں نے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ حکومت اس بات کو سمجھ لے کہ تحریک طالبان پاکستان زندہ ہے، پوری قوت کے ساتھ باقی ہے، اور جہاں چاہے، جب چاہے، جس جگہ چاہے وہ پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کر سکتی ہے اور پاکستان کے اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی کوشش آج کے پروگرام میں کی جائے گی کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جڑیں ہیں کہاں، اور دہشت گردی کے فروغ میں، دہشت گردی کو پھیلانے میں، پاکستان کو ناامن بنانے میں طالبان پاکستان کا کردار کیا ہے، اور کیا پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گردی کی جا رہی ہے اس کو الگ کر کے پاکستان کے اداروں کے خلاف اور خود پاکستان کے وجود کو چیلنج کرنے والی دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں دہشت گردی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک وہ دہشت گردی ہے جس میں شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایک وہ دہشت گردی ہے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف ہے؟ اگر یہ سمجھا جائے تو پھر شیعہ مسلمان کیا پاکستانی نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا۔ اور جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کے سلسلے میں دوہرے معیار اپنائے گئے تو اس کا نتیجہ دہشت گردی کے فروغ کی شکل میں نکلے گا، دہشت گردی کنٹرول میں نہیں آ سکتی ہے۔ امریکہ سے یہی غلطی ہوئی ہے، یا امریکہ نے دانستہ یہ غلطی کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر اس نے دوہرے معیار اپنائے ہیں۔ ایک جگہ دہشت گردوں کے خلاف امریکہ کارروائی کا دعویٰ کرتا ہے، دہشت گردوں کے خلاف حملے کرتا ہے، اور دہشت گردوں پر قابو پانے کے لیے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے بہانے ہی اس نے افغانستان پر حملہ کیا، اس نے عراق پر حملہ کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہی انتہا پسند دہشت گرد جن کو ختم کرنے کے بہانے اس نے افغانستان پر حملہ کیا اور عراق پر حملہ کیا، وہی القاعدہ، اسی القاعدہ سے وابستہ اور اسی القاعدہ کے اراکین شام میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، امریکہ ان کی حمایت کر رہا ہے، عراق میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اور امریکہ سے وابستہ ممالک اور امریکہ کے اتحادی ممالک عراق میں بھی اور شام میں بھی دونوں جگہ پر کھل کے ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں جن کے خلاف کارروائی کے بہانے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا اور عراق پر قبضہ کیا۔ اور طالبان کا جہاں تک سوال ہے کہ پاکستان میں جو طالبان ہیں ان کی امریکہ کی جانب سے حمایت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن اکثر تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو طالبان ہیں ان کی پشت پر بھی امریکہ بہادر موجود ہے، اور افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کی پشت پر بھی امریکہ بہادر موجود ہے، اور افغانستان کے طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں، وہ بھی طالبان سے ہی وابستہ ہے۔ چنانچہ ابھی گزشتہ دنوں تافتان میں زائرین کے ہوٹل پر جو حملہ کیا گیا ہے جیش الاسلام، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ طالبان سے ہی وابستہ ہے، اور ان کا جو جھنڈا ہے اس پر وہی عبارت درج ہے اور وہی نشان ان کا بھی ہے جو طالبان افغانستان کا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اسلام آباد سے ثاقب اکبر صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ثاقب اکبر صاحب، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب اکبر صاحب، پاکستان میں ابھی حالیہ دنوں میں جو دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، ان کی طرف آنے سے پہلے ابھی ہماری رپورٹ میں ایک بات کہی گئی کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور بجا طور پر کہنا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھ کے امن قائم نہیں ہو سکتا، جبکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حامیوں کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدہ ہوئے بغیر پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا کہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ گروہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ امن قائم کیا جانا چاہیے، اور جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں عوام کے خلاف یا لوگوں کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف، وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر وہ پاکستان کے آئینی حکومت یا آئینی ریاست کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں تو میرا خیال ہے ان کو الگ کر لینا چاہیے، اور جو لوگ کسی صورت بھی پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پاکستان کے آئینی اداروں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ فوری طور پہ بغیر کسی، میں سمجھتا ہوں کہ مزید تاخیر کے جو ہے وہ شروع کی جانا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ لوگ اس ملک کے اندر مختلف شہروں میں، چاہے وہ فرقہ وارانہ وارداتوں میں ملوث ہوں اور چاہے وہ پاکستان کے مختلف اداروں یا لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوں، ان کے خلاف بھی بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کاروائی کی جانا چاہیے۔ یہ تو دنیا میں کوئی ریاست بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس وقت تک پاکستان کی ریاست نے جس طرح کی ٹالریشن کی ہوئی ہے۔ ابھی تک پاکستان کے جی ایچ کیو پر 10 اکتوبر 2009 کو حملہ ہوا، پاکستان کے مہران بیس پر 27 مئی 2011 کو حملہ ہوا، کامرہ ایئر بیس پر 16 اگست 2012 کو حملہ ہوا، پشاور ایئرپورٹ پر 15 دسمبر 2012 کو حملہ ہوا، اور ابھی کراچی ایئرپورٹ پر پھر 8 جون 2014 کو حملہ ہوا۔ پاکستان کی، ہمیں حیرت ہے کہ پاکستان کی ریاست ابھی تک اس طرح کی چیزوں کو ٹالریٹ کر رہی ہے، اور کیا اس کے بعد بھی کسی قسم کے جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں؟ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں ان کا مسئلہ الگ ہے، اور پاکستان کی ریاست کی بالادستی کو اور آئینی بالادستی کو قبول کر لیں، اور جو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی شاہد اللہ شاہد کا جو بیان اس سلسلے میں ابھی آیا ہے، اور اس نے جس طرح سے مبارکباد دی ہے اپنے نام نہاد شہداء کو، کی عظمت کو جو ہے سلام عقیدت پیش کیا ہے ریاست کے خلاف اپنی، انہوں نے کہا ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ جو ایک طرف فخر کے ساتھ اس طرح کی کاروائیوں کو قبول کر رہے ہوں، ان کے ساتھ مذاکرات، میرا خیال ہے اس سے بڑا مذاق تو ہو نہیں سکتا۔
ابھی طالبان نے جو حکومت پاکستان کو اپنے دہشت گردانہ حملے جاری رکھنے بلکہ شدید تر کرنے کی دھمکی دی ہے، جو آج کے ہی پاکستان کے اخبارات میں یہ دھمکی موجود ہے، اس دھمکی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میرا خیال یہ ہے کہ پہلے بھی ایسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دی جاتی رہی ہیں، اور ابھی جو اس ایئرپورٹ پہ، پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ پہ حملے کے بعد جو شاہد اللہ شاہد کا بیان آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی کاروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان لوگوں کی اصابت رائے جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، ان کے میلان جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مسئلے کو بہت ہی سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے شریعت اسلامی کا مفہوم اور اس کے نفاذ کا طریقہ کار۔ جب یہ طالبان کے مذاکرات کمیٹی کے لوگ آ کے میڈیا تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو پاکستان میں اسلامی حکومت اور اسلامی قانون کی بالادستی جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کی ریاست کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کرے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو کنفیوژن پائی جاتی ہے ان لوگوں کے درمیان جو پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، ان کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ اسلام کا سہارا لے کے یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، और ऐसे लोग जो जैसे आपने पहले भी अपना इशारा किया अपनी बात में, यानी तफ्तान के जो बिल्कुल निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जैसे हमला किया गया, पहले भी क्वेटा में जनवरी में अपना बलोचिस्तान में दो हमले हो चुके हैं, उससे बसों के ऊपर इस तरह के दीगर हमले, क्या तालिबान की कमेटी ये क्लियर कट कहने को तैयार है कि ये सब दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये हमले किए हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाना चाहिए? क्यों नहीं, यानी खुल के अपने आप को अलग करते वो लोग जो पाकिस्तान में एक ठीक इस्लामी मुआशरा कायम करना चाहते हैं, इसी तरह से वो लोग ये बात क्यों नहीं कहते कि वो लोग जो दहशतगर्द साबित हो चुके हैं, अदालतों ने उनको सजा दे दी है और उनको डेथ सेंटेंस हो चुका है और जिनकी फाइल्स प्रेसिडेंट की मेज के ऊपर पड़ी हैं, जिनकी अपीलें रिजेक्ट हो चुकी हैं, उनको पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक जो है वो सजा दी जाए, ये लोग क्यों नहीं कहते खुल के? तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनके जज्बे जिनके दिल उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके उनकी माहियत को जो है इस मरहले पर समझने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मरहले पर ये लोग जहनी तौर पर जो है वो खारजियत के हामिल हैं, और ये लोग अगर इनके हाथ में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की बागडोर आ जाए या पाकिस्तान में इस्लामी निजाम के नफाज का इख्तियार जो है इन लोगों के हाथ में हो जाए, तो ये पाकिस्तान में इसी तरह का अमन कायम करेंगे जैसे पहले बाकी खितों पे ये अमन का अमन कायम कर चुके हैं। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुतालबात तस्लीम कर लिए थे सवात के अंदर, फिर सवात के अंदर इन लोगों ने जो कुछ किया वो कौन नहीं जानता कितने जुल्म किए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहाँ बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिशवर और सीनियर तजिया निगार शब्बीर रिजवी साहब मौजूद हैं। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम।
रिजवी साहब, कराची पर हमले के बाद तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्ला शाहिद ने कहा है कि कराची हमला हुकूमत को ये बताने के लिए किया गया है कि तालिबान जिंदा हैं और जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप तालिबान के तर्जुमान के इस बयान के बारे में?
देखें भाई, जहाँ तक पाकिस्तान के ये अभी जो अटैक कराची एयरपोर्ट पर किया गया था और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट है कि
जी
तालिबान पाकिस्तान में जिंदा हैं, यकीनी तौर पर जिंदा हैं। ना सिर्फ उनको सरपरस्ती मिल रही है सऊदी पैसे से, और फिर अमेरिकन सपोर्ट जो है कंटिन्यू हो रही है तालिबान को, और उसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, वो पिछले जब से इलेक्ट हुई है वो ये चाहती है कि डिस्कशंस हो, डायलॉग हो इनके साथ। तो इसकी बिना पर जो है पाकिस्तान के जो तालिबान है, जो अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ तहरीक टेररिस्ट पाकिस्तान, तो वो जो असल में पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो। और इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इनको बैरूनी ममालिक से सपोर्ट मिल रही है, और रिसेंटली कुछ महीने पहले मैडम क्लिंटन ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बड़ी खुशी से और इजहार करते हुए ये कहा कि हमने तालिबान को बनाया था रशिया को अफगानिस्तान से निकालने के लिए, और हमने उन्हें आर्ममेंट दिए थे और हमने उन्हें पैसा दिया था, हमने उन्हें ट्रेनिंग दी थी। और आज तक 2014 तकरीबन 30 साल 32 साल गुजर गए तालिबान के क्रिएशन जो किया गया था, उसके बाद भी आजकल जो है अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी फंडिंग मिलती जा रही है, खतर में उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है। सो ये सिचुएशन जो पाकिस्तान में तालिबान की है, ये सिर्फ एक वो कड़ी है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी की फिजा पैदा कर रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से मूजल जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी इराक है, वहां पर इसी फिक्र के तकफीरी ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है। और यकीन माने, चाहे आप लीबिया की सिचुएशन लें, इजिप्ट की सिचुएशन लें, सीरिया की लें, इराक में रहें, देखें हर जगह यही तकफीरी और वहाबी फंडेड ग्रुप जो है दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 8 से लेकर 10 साल सऊदी में गुजारे हैं, तो उनके ताल्लुकात सऊदी बादशाहों से अच्छे खासे हैं, और सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई करती है एट रिड्यूस प्राइस, और ये चाह रही है कि सऊदी हुकूमत के पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर जो है सऊदी के पास आ जाए। तो इस तरह से जो फिजा पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में काफी डेंजरस है, और ना सिर्फ डेंजरस है पाकिस्तान के लिए मगर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिए ये जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया है पूरे रीजन के लिए डेंजर पैदा कर सकता है, और इसको जो है पाकिस्तानी हुकूमत अगर चाहे तो खत्म कर सकती है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तालिबान को खुश करना चाह रहे हैं, तालिबान को मैनेज करना चाह रहे हैं, और सऊदी प्रेशर की बिना पर वो ज्यादा इनके खिलाफ यानी कि प्रोग्राम करने के लिए राजी नहीं है इस वक्त।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। तालिबान के नज़रिए और शरीयत के नफाज के सिलसिले में भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक सवाल
बिल्कुल
जो हम यहाँ आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि कराची के लिए काफ़ी अरसे से कराची के अवामी हलके, मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ लीडरों की जानिब से, हत्ता बैन अलाक्वामी रिपोर्टों में भी इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान में तालिबान के मराकज़ जिन शहरों में और जिन इलाकों में हैं उनमें कराची भी शामिल है, और
बिल्कुल
कराची के लिए यहाँ तक कहा गया कि तालिबान का अहम तरीन मरकज़ कराची बन चुका है। इसके बावजूद ये गफलत कैसे हुई कि सिक्योरिटी में ये कमज़ोरी रखी गई कि बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे जैसे अहम मरकज़ में तालिबान के दहशतगर्द दाखिल होने में, रनवे तक पहुँचने में कामयाब हो गए और दूसरे दिन फिर उन्होंने हमला किया?
मैं ये समझता हूँ जी कि बहुत ही एक बुनियादी मसला है और बड़ा मखमसा है अभी तक, और पाकिस्तान में जो इस मौजू के माहरीन हैं वो भी इस नुक्ते की निशानदेही करते हैं कि क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे अफगानिस्तान के अंदर अपने उमूर में वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने वहाँ के तालिबान को या तालिबान के बाज़ हलकों को सपोर्ट करना है, या क्या अफगानिस्तान के अंदर वो अपने स्टेक्स को अभी तक ऑन करते हैं, ये समझते हैं कि है, या क्या वो समझते हैं कि आइंदा बनने वाली हुकूमत में उनका भी कोई ना कोई नुक्ता नजर होना चाहिए, या तालिबान के साथ वो मुस्तकबिल में किस तरह का तआवुन या अदम तआवुन या गैर जानबदाराना पॉलिसी जो है वो रखना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इस मसले पे जब तक क्लैरिटी नहीं होगी बाकी अमूर में क्लैरिटी जो है ना वो पैदा नहीं हो सकती। हम अभी ये तो कहते हैं, जाहिर है कि हम तो यही कहेंगे पाकिस्तान की रियासत के खैर ख्वाह होने की पॉइंट ऑफ व्यू से, या तालिबान का जो तर्ज अमल है या जो उनका फहम शरीयत है या जिस अंदाज से उसको वो उनकी प्रायोरिटीज हैं हम उनको कबूल नहीं करते, उसको दुरुस्त नहीं समझते, तो हम तो यही कहेंगे कि उनका इस्तेसाल होना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी इस सिलसिले में एट पार सब ऐसे तालिबान को जो किसी भी जगह पर जो है पाकिस्तान के रियासत के लिए ख़तरा है उनसे अलीहदगी का फैसला करते हैं? जब हमें ये पता है कि ये कई ऐसे वाकयात हुए, ये दो ग्रोहों के दरमियान तसादुम हुआ तो भी मुल्ला उमर की क्यादत ने इंटरवीन किया और उनके दरमियान एक आरजी सुलह करवाई। इसी तरह से हम ये भी समझते हैं कि जब इंतखाबात का मरहला आया हकीमुल्ला महसूद के कत्ल के बाद, तो फिर उस इंतखाब के मसले में जब दो ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफ राय हुआ तो फिर भी अफगानिस्तान के तालिबान ने इंटरवीन किया। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि अहम तरीन बाज लीडर और ग्रोह जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पनाह ली हुई है और उनके मुल्ला उमर के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है मौजूद है और उनके तहफ्फुज़ के बगैर वो वहाँ पे नहीं रह सकते। मेरा ये ख्याल है कि ये मसला ज़्यादा अहम है और यही मखमसा है जिसकी वजह से बाकी जो आपका सवाल है कि फलां शहर में भी इस तरह मौजूद हैं, पता है हमें कि कराची में सबसे ज्यादा वो मौसर ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, तो अगर वहां अगर गवर्नमेंट हमारी यानी इंटेलिजेंस हमारी एजेंसियां या सिक्योरिटी के इदारे ये फैसला करते हैं कि हमने अफगानिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कि अफगानिस्तान जाने, अफगानिस्तान के लोग जाने, उनकी हुकूमत जाने, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोई वहां उनकी मुदाखलत ना हो और हमारे वहां स्टेक्स नहीं है। हम अगर जैसे कि पाकिस्तान के वजीर आजम कह चुके हैं, पाकिस्तान के मुशीर खारजा कह चुके हैं, तो क्या अमलन ये सारी बात ऑन ग्राउंड मौजूद है ये असल में सवाल है, अगर पाकिस्तान के असर और रसूख नहीं है तालिबान के साथ, तो पाकिस्तान क्यों कहता है अमेरिका से कि जी मुज़ाकरात में हम आपके साथ तआमुन करने के लिए तैयार हैं? भाई आप कौन होते हैं कि आप अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए आप कहते हैं हम जो है वो तआमुन करने के लिए तैयार हैं? यही वो मेरा ख्याल है बुनियादी मखमसा है, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फौज को अफगानिस्तान के मसले में हकीकी तौर पर गैर जानिबदार होना पड़ेगा। अगर आप दूसरी तरफ ये देखें कि तालिबान भी ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान के रियासत ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने तआवुन फराहम किया है जिनके खिलाफ वहाँ हम नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम अपने दुश्मन के दोस्त को दुश्मन समझते हुए हम उनके खिलाफ जो है वो मसरूफ जंग व जहाद हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मखमसा है अगर हम ये बात साबित कर दें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं अफगानिस्तान के अंदर किसी भी ग्रुप के साथ, तो फिर मेरा ख्याल है ये एक बुनियादी दलील जो पाकिस्तानी तालिबान के हाथ में है उनके हाथ में से ये दलील हम खत्म कर देंगे और हम इत्मीनान से अपने शहरों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे।
साकिब अकबर साहब, एक सवाल हम आपसे ही और करेंगे, फिर शब्बीर साहब की तरफ जाएंगे। आपकी जो गुफ्तगू है उसी के तनाजुर में मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि तालिबान दहशतगर्द ग्रोह हैं या नहीं है। अगर ये दहशतगर्द ग्रोह है तो क्या रियासत के मफाद को किसी दहशतगर्द ग्रोह से जोड़ना ये मुनासिब होगा?
बहुत ही एक पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में बहुत एक मसला है, ये बहुत बड़ा मसला। हमारे जो वो लोग जो ऐसे मजहबी क्यादतें जो अभी तक तालिबान के लिए चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे अफगान हो एक गुना हमदर्दी जो रखते हैं, उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि तालिबान चूंकि अमेरिका या नाटो फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में बरसरे पैकार हैं, तो इसलिए वो लोग जो नाटो फोर्सेस के खिलाफ बरसरे पैकार हैं उनके तो हम हामी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं उनके हम मुखालिफ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सही कोई खत खींच सकते हैं कि ये लोग वो हैं और ये वो लोग हैं। एक इसी तरह से एक और अहम इसमें सवाल पैदा होता है
जी
कि वो लोग जो पाकिस्तान की सरजमीन से जाकर या ओरिजिनली पाकिस्तानी हैं या नहीं है, इस सरजमीन से जाके अफगानिस्तान के अंदर वो अटैक्स करते हैं नाटो फोर्सेस पे, तो उनके बारे में यही लोग जो हैं क्या ये समझते हैं कि उनको पाकिस्तान में सेफ पैसेज और सेफ जो है वो मौका जो है वो मिलना चाहिए कार्रवाइयों का? मेरा ख्याल है ये बजाते खुद ये वो रास्ता है जो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए जो है वो रास्ता जो है वो खोलता है और दलील जो है वो फराहम करता है। हमें हर तरह की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर अपने आप को अलग करना चाहिए और रियासती इदारों को भी चाहिए कि रियासत के अंदर रियासत और रियासत के इदारों की नाक के नीचे इस तरह के किसी किस्म का जो दहशतगर्द ग्रोह है उसको ये किसी किस्म की कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे, ना इस मुल्क के अंदर और ना इस मुल्क के बाहर। मेरा ख्याल है इसके बगैर मसला हल नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। जनाब तालिबान का दावा है कि वो इस्लामी शरीयत के निफाज के लिए मुजाहदत कर रहे हैं और बहुत से उलमा और मजहबी तंजीमें जो हैं वो इनके इस दावे की तायद करती हैं, बहुत से उलमा उनके तरफदार हैं, हत्ता तालिबान के मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हैं। कराची एयरपोर्ट पर हमले में जो लोग मारे गए क्या वो सब के सब अज़रुए शरीयत वाजिबुल कत्ल थे? क्या उनका कत्ल जायज था?
देखिए जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है ये हमें यकीनी तौर पर पता है कि वो जिस शरीयत की बात करते हैं वो ना शरीयत मोहम्मदी है और ना किसी तरह से इस्लाम की उसमें रूह है। वो प्रोपोगंडा तो करते हैं कि हम जो है इस्लामी शरीयत राइज करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और ना सिर्फ पाकिस्तान में हर जगह इस तरह के तकफीरी ग्रुप्स का यही नारा होता है कि वो इस्लाम और शरीयत लॉ को जो है अप्लाई करना चाहते हैं। मगर इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, उनका तर्ज अमल क्या होता है और किस तरह से वो ये शरिया लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि तालिबान के फिक्र रखने वाले तकफीरी और वहाबी ग्रुप्स वो इंसानों का कत्ल करते हैं, ना सिर्फ कत्ल करते हैं, उनका गला काटते हैं, उनके सीनों में से कलेजा निकाल कर खाते हैं और इंसान की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। ना सिर्फ वो यानी कि पाकिस्तान के ताल्लुक से जब कहते हैं कि हम शियों के खिलाफ हैं या शिया काफिर कहकर वो नारा लगाते हैं, मगर जब वो बॉम्ब लगाते हैं लाहौर में या कराची में, इस वक्त एयरपोर्ट पर जो टेररिस्ट अटैक में लोग मारे गए उनमें से पूरे तो शिया नहीं थे, उसमें जो है हो सकता है दूसरे मुसलमान भी थे, हो सकता है कोई क्रिश्चियन भी थे। यकीनी तौर पर तालिबान ग्रुप जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है। और जैसे हमारे भाई अभी फरमा रहे थे वहाँ से कि जब तक पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ये नहीं चाहती हैं कि टेररिज्म को और टेररिस्ट ग्रुप्स को ख़त्म किया जाए तो जब तक प्रॉब्लम चलता रहेगा पाकिस्तान में। और शरीयत का ताल्लुक जो है, देखें हमेशा से हिस्टोरिकली इस्लाम में कुछ ऐसे अनासिर हमेशा आते रहे और इस फिक्र के लोग आते रहे जिन्होंने इस्लाम का नारा लगाया है, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया है और अक्सर यही कहा है कि हम इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। मगर यकीनी तौर पर हिस्टोरिकली भी और करंट सिचुएशन में, चाहे वो अफगानिस्तान के ताल्लुक से हो या पाकिस्तान में, इस वक्त इन्हें इस्लाम से कुछ मोहब्बत नहीं है, ना इस्लाम से, मैं तो कहता हूं कि इन्हें इंसानियत से कोई मोहब्बत नहीं है। वो इंसानियत के दुश्मन है, ह्यूमन राइट्स को पामाल करते हैं और कत्लेआम करते हैं। आप देखें पाकिस्तान में अगर ये तालिबान जैसी फिक्र रखने वाले पोलियो सिर्फ ट्रीटमेंट के नर्सिस को और दूसरे एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान में पोलियो को कंट्रोल करना चाहते हैं उनका कत्लेआम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वो शरीयत चाहते हैं। और मेरे एनालिसिस से तो ये लगता है कि पाकिस्तान में 99% से ज़्यादा पब्लिक जो है वो तालिबान जैसी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं चाहती है और वो ये नहीं चाहती है कि इस तरह का शरिया लॉ पाकिस्तान में अप्लाई किया जाए। तो किसी लिहाज से पब्लिक की सपोर्ट तालिबान को नहीं है और जब तक यानी कि उनकी सरपरस्ती पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और आईएसआई करती रहेंगी तो ये टेररिज्म बढ़ता जाएगा। जब तक वो खुद अपने आप पर काबू पाकर इन टेररिस्ट ग्रुप्स को ख़त्म नहीं करते तो पाकिस्तानी पब्लिक बेचारी हमेशा सफ़र करती रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। जनाब इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि कराची एयरपोर्ट पर हमले में जो लोग मारे गए हैं वो बेगुनाह थे। तालिबान का दावा है कि वो शरीयत इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। उनके तरफदारों का कहना यह है कि तालिबान इस्लाम के नफाज के लिए मुजाहदत कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि इस्लाम के जितने भी फ़िरके हैं, क्या किसी फ़िरके की शरीयत बेगुनाहों के कत्ल की इजाज़त देती है?
देखिए कुरान को अगर हम माने तो वो तो कहता है कि एक शख्स का बेगुनाह शख्स का कत्ल जो है वो सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में 4,332 अफराद इन दहशतगर्द हमलों में मारे गए, जिनमें फौजी या दूसरे जो अहलकार हैं वो तो गिनती के हैं चंद, ज़्यादातर लोग तो अवाम हैं जिन जो बेगुनाह तो साबित ही है, जिनके पास ना कोई असलाह है ना हथियार हैं, बसों में, गाड़ियों में, अस्पतालों में, इसी तरह से नमाज पढ़ते हुए या अपना कोई गिरजे में को किसी जगह मारा गया, ये बेगुनाह और नहत्ते लोगों को मारा गया है। तो जाहिर है बेगुनाह और नहत्ते लोगों को मार कर अगर कोई कहे कि मेरा मकसद शरीयत नाफिज करना है तो ये बिल्कुल जाहिर है कि कुरान हकीम की और शरीयत की बिल्कुल क्लियर कट तालीमात के जो है वो मुनाफी है। इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है कि जिससे दूसरे लोग अमन में रहें। आपने इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसान ही व यद, मुसलमान वो है जिसका यानी जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, तो ये मुसलमान की और मोमिन की तो तारीफ में ये लोग नहीं आते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल इस मखमसे से और इस गलतफहमी से, ऐसे लोग अगर वाकई उनसे कोई मुतासर है तो उनको निकल आना चाहिए। शरीयत के निफाज का ये तरीक़ेकार नहीं है। नबी पाक ने खुद अपनी पूरी जिंदगी में जबरदस्ती कोई चीज नहीं की, उनके ऊपर जबरदस्ती की गई, उनको उनके शहर से निकाला गया, उन्होंने किसी और शहर में जाके पनाह ली तो वहां जाकर उनके ऊपर हमले किए गए। नबी पाक ने खुद, यानी अगर नबी पाक का उसवा जो है वो हकीकत इस्लाम और शरीयत इस्लामी का मजहर है, तो फिर नबी पाक की तो ये सुन्नत और ये सीरत नहीं है जो तालिबान ने इख्तियार कर रखी है। मेरा ख्याल है इस मसले में तो हम बिल्कुल क्लियर हैं, और जो लोग इसमें अभी तक वाजे नहीं हो सके उनको चाहिए कि खुद से कुरान हकीम का मुताला करें, गौर व फिक्र करें नबी पाक की सीरत और तर्ज अमल से। लिहाजा ये जो तर्ज अमल है इनको चाहिए कि पाकिस्तान के पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करें। मौलाना मौदूदी ने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया, जमात JUI जो मतलब देवबंदियों की बड़ी जमात है उसने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया, शियों की जमातों ने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया, सल्फियों की जमातों ने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया इंतखाबात का, मुस्लिम लीग ने, कायदे आजम ने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया एक इस्लामी रियासत बनाने का। ये जो ग्रोह हैं जो महदूद हैं, चंद हजार से ज्यादा इनकी तादाद नहीं है, यही वजह है कि ये छुप के हमले करते हैं। इनका नुक्ता नजर ये जबरदस्ती का इस्लाम और शरीयत का अपना फहम जिस तरह नापस करते हैं, ये बिल्कुल सदर इस्लाम में जो खवारिज का तर्ज अमल था ये उससे उसकी अक्कासी करते हैं। और खवारिज को तमाम मुसलमानों ने मिलकर खवारिज कहा कि इस्लाम की एतदाल की जो कुसरात है उससे हटकर उन्होंने दूसरा तर्ज अमल इख्तियार किया। उन्होंने अपने नुक्ता नजर को ना मानने वाले सब लोगों को काफिर कहा, यही ये लोग कर रहे हैं, और उन्होंने सबके खिलाफ हमले जो है वो शुरू कर दिए, बेगुनाहों को कत्ल करना शुरू कर दिया। वो एक उनका तर्ज अमल ये था कि एक दरख्त की शाख को तो वो नहीं काटते थे एक के जी ये किसी की मलकियत है और ये जायज नहीं है, लेकिन अपने मुखालिफ का खून बहा देते थे कि ये हमारा हम फिक्र नहीं है। ये बिल्कुल यही तर्ज अमल इनका है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको पूरी उम्मत इस्लामिया के ये सारी पार्टीज को अगर इनको इस तरह से आने दिया गया तो मैं जिन मजहबी जमातों के और ग्रोहों के नाम लिए हैं इनको आगाह हो जाना चाहिए कि इन ये भी यरगमाल बन जाएंगे उनके। इनको चाहिए कि अपने आप को उनसे जुदा करें ताकि इस मुल्क में एक जमहूरी और पुरअम जदोजहद के जरिए से हम इस्लामी इकदार की बालादस्ती की जो है ना उसके लिए कोशिश करें और उनको बरसर इकतदार लाने के लिए कोशां रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। जनाब इस बात का कितना इम्कान है कि तफ्तान में जायरीन पर और कराची एयरपोर्ट पर हमला पूरी हमाहंगी के साथ किया गया हो?
यकीनी तौर पर इसमें कोऑर्डिनेशन तो लगता है। अक्सर एनालिस्ट और तजिया निगारों ने यही कहा है कि ये जो एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था ये हो सकता है उज़्बेक थे, हो सकता है दूसरी नेशनलिटीज़ के थे, तो ये तालिबान एक्टिविटीज़ यकीनी तौर पर एक यानी कि एक प्लान के साथ की गई थी। बहरहाल प्लान जैसा भी हो, बात यह है कि इस वक्त जो तालिबान का पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट है और यानी कि हिस्टोरिकली जो इस तरह के दहशतगर्द हैं वो बैरूनी ममालिक से पहले आया करते थे, अरब ममालिक से, लीबिया से, ट्यूनीजिया से, इजिप्ट से, हर मुल्क से वो आया करते थे पाकिस्तान में। पिशावर में उनकी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ से वो अफगानिस्तान जाकर रशिया के खिलाफ लड़ते थे। इसी तरह जो है अब पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है उन्होंने यकीनी तौर पर बैरूनी ममालिक से रिक्रूट किए हैं और वो जो है आकर यहाँ पर पाकिस्तान में अटैक्स कर रहे हैं, मगर खुद पाकिस्तानी तालिबान इटसेल्फ जो यानी कि होम ग्राउंड आप कह सकते हैं उसमें यकीनी तौर पर जिस तरह से मदारिस पाकिस्तान में चल रहे हैं हर गली में हर कोने पर और खुसूसन कराची जैसे शहर में बड़े बड़े मदारिस चल रहे हैं जहां पर तकफीरी फिक्र सिखाई जा रही है और वहां पर कम उम्र बच्चों को लिया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है इस तरह से कि वो हर इस्लामी फिक्र रखने वाले को काफिर समझें और उसका खून बहाना जो है उनके लिए जायज़ समझा जाए। तो इस तरह के नौजवान जब वहाँ से मदारिस से ट्रेन होकर निकलते हैं तो वो सिर्फ दहशतगर्द बन सकते हैं, वो अमन और डायलॉग और यानी कि गुफ्तगू करने का सलीका उनमें नहीं होता है, सिवाय उन्हें यह मालूम है कि किसी को कत्ल किया जाए तो तकफीरी फिक्र आगे बढ़ेगी। मगर जैसे हमारे भाई जो बहुत अहम बात कर रहे थे उसको मैं दोबारा अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की दूसरी मजहबी तंजीम जो हैं उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि तकफीरी और तालिबान जैसे ग्रुप्स को अगर अपर हैंड मिलता है पाकिस्तान में तो वो यानी कि इदारे और वो जमातें भी जो है इनके लिए एक आसान रास्ता बन सकती हैं, वो जो उनको भी ख़त्म कर सकते हैं आने वाले दौर में अगर
बहुत शुक्रिया
इसको अभी ख़त्म ना किया गया पाकिस्तान।
बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। पाकिस्तान में जो शिया किलिंग है, शियों के खिलाफ जो दहशतगर्दी है, इमाम बारगाहों पर हमला है, अभी हालिया हमला जो ताफ्तान में ज़ायरीन पर किया गया, ये हमले दहशतगर्दी हैं या नहीं है? और अगर दहशतगर्दी हैं तो फिर इन हमलों को यानी शिया मुसलमानों के खिलाफ जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं उन पर काबू पाए बगैर क्या उस दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है जिसने पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज कर रखा है?
मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रेटजिकल सवाल है आपका और बड़ा अहम सवाल है, और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे हैं उनसे किया जाने वाला सवाल है। मसला ये है कि आज तक मैंने नहीं महसूस किया कि पाकिस्तान की रियासती इदारों ने इस मसले को संजीदगी से एड्रेस किया हो कि शियों को बिल्कुल बेदरेग जहां चाहते हैं और जब भी चाहते हैं जो है वो उसको ये दहशतगर्द ग्रोह जो है वो निशाना बनाते हैं और हुकूमत की तरफ से और रियासती जिम्मेदार इदारों की तरफ से कोई ऐसा हौसला अफजा उस पर रद्द अमल सामने नहीं आता कि जिसके बारे में कहा जाए कि अब किसी हमले का इम्कान कम हो गया है। और एक और नुकता बड़ा अहम है, जितने भी इस तरह के हमले हुए हैं वो सारे के सारे निहत्ते लोगों पर हुए हैं। तीसरी अहम बात यह है कि शियों ने कोई रिटेलिएशन नहीं की है ऐसी जिसको वायलेंट कहा जाए, यानी जिसमें अमन को खराब करने वाली, उन बेचारों ने धरने दिए हैं और अमन या भूखे रहकर लाशों के इर्द गिर्द बैठकर, ये सारी चीजें बताती हैं कि शिया इंतहा दर्जे के मजलूम भी हैं और उनका कोई इस मुल्क में वाली वारिस भी नहीं है। ऐसे इदारों के ऐसे ग्रोहों के खिलाफ अगर यही तर्ज अमल रहा पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारों का तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में अमन का ख्वाब जो है ये कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, इसलिए कि इन सब की बाग एक जगह पर है, ये आपस में इकट्ठे हैं, ये तकफीरी ग्रोह हो या वो दहशतगर्द ग्रोह हो जिन्होंने पाकिस्तान के कीमती असासों को तबाह किया है, पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों को निशाना बनाया है। लिहाजा पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों के दुश्मन और शियों के दुश्मन एक हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं एक जैसी होती? ये बहुत ही आपने बुनियादी सवाल उठाया है और ये सवाल हकीकत ये है कि उन इदारों से किया जाना चाहिए जिनको दिलचस्पी है पाकिस्तान की रियासत से और वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए यहाँ एट पर यानी ठीक मुनसिफाना जो है वो अमन कायम करने की जरूरत है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। इसी के साथ हम शब्बीर रिजवी साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल नाज़रीन, दोनों तजिया निकारों और दानिश्वरों के ख्यालात आपने मुलाहिजा फरमाए। दहशतगर्दी के सिलसिले में जब तक दोहरे मेयारों पर अमल किया जाएगा उस वक्त तक ना आलमी सतह पर दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है ना मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है। ये अमेरिका है जिसने दहशतगर्दी के सिलसिले में दोहरे मेयार अपना रखे हैं। वो दहशतगर्द जो अमेरिकी मफादात के लिए काम करते हों उनकी हिमायत की जाएगी और जहाँ दहशतगर्दी उसके मफाद में हो वहाँ दहशतगर्दी की हिमायत करेगा। जैसे अलकायदा है, अलकायदा कि वो मुखालफत का दावेदार है, लेकिन अलकायदा अगर दहशतगर्दी शाम में करती है जो अमरीकी मफाद के मुताबिक है, इराक़ में दहशतगर्दी, या उन मुल्कों में जहाँ अलकायदा की दहशतगर्दी अमरीकी मफाद की हिमायत में हो, वहाँ अमरीका खुल के अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्दों की हिमायत करता है। दूसरी बात यह है कि अपने नाजायज़ मफादात के लिए अमेरिका दहशतगर्दों से काम लेता है, उसका ये अमल भी काबिले तकलीद नहीं है। कभी भी रियासत के मफाद को दहशतगर्द गुरोहों से वाबस्ता नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान में भी उस वक्त तक दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जा सकता है जब तक शिया मुसलमानों पर जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं उनमें और पाकिस्तान की रियासत के अहम मराकज़ पर जो दहशतगर्दाना हमले हों उनमें फ़र्क का कायल हुआ जाए, बल्कि दोनों हमलों को एक साथ मिला के देखना होगा। और पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, जब तक उनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जाएगी उस वक्त तक पाकिस्तान की रियासत को दहशतगर्दी से निजात नहीं मिल सकती। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thereteofsahartv.ir। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त